ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए राज्य के 5 संसदीय क्षेत्रों झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया में आज नाम वापसी का अंतिम दिन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सुलभ इंटरनेशनल के प्रणेता विंदेश्वर पाठक को मरणोपरांत पद्म विभूषण से किया जाएगा सम्मानित। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कहा 4 वर्षीय स्नातक डिग्री धारक अब सीधे राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट में शामिल हो सकेंगे। और राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर हिस्से भीषण गर्मी और लू की चपेट में। मौसम विभाग ने आज बांका, शेखपुरा और भागलपुर जिले में लू की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए आज नाम वापसी का अंतिम दिन है। इस चरण के तहत राज्य के 5 संसदीय क्षेत्रों झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया में 7 मई को मतदान होना है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार इन संसदीय क्षेत्रों के लिए 54 प्रत्याशियों के नामांकन वैध पाए गए हैं। कुल 96 उम्मीदवारों ने नामांकन पर्चे दाखिल किए थे, जिनमें से 42 खारिज कर दिए गए। अररिया लोकसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 20 नामांकन पत्र रद्द किए गए हैं। इस क्षेत्र में 29 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरे थे। झंझारपुर में 17 नामांकन पत्र भरे गए थे, जिनमें से 10 वैध घोषित किए गए हैं। वहीं सुपौल लोकसभा क्षेत्र में 15, अररिया में 9, मधेपुरा में 8 और खगड़िया में 12 नामांकन पत्र वैध पाए गए हैं। प्रदेश में दूसरे और तीसरे चरण के लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज बांका, भागलपुर और किशनगंज में एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान संयुक्त रूप से पूर्णिया, कटिहार और भागलपुर लोकसभा क्षेत्रों में एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। दूसरी तरफ राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव आज बांका, पूर्णिया और कटिहार में एनडीए गठबंधन के उम्मीदवारों के समर्थन में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। उनके साथ विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी भी मौजूद रहेंगे। इधर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल बिहार दौरे पर रहेंगे। वे भागलपुर, खगड़िया और झंझारपुर में एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। सीपीआईएम ने बिहार के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सीताराम येचुरी, पोलित ब्यूरो सदस्य वृंदा करात, सुभाषिनी अली और अशोक धावले समेत 40 नेता शामिल हैं। लोकसभा चुनाव के लिए राज्य के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की श्रृंखला में आज जानकारी सुपौल लोकसभा सीट की। सुपौल बिहार के 5 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है, जहां तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होना है। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
कोसी नदी के मध्य स्थित सुपौल संसदीय क्षेत्र की राजनीति और चुनावी समीकरण भी कोसी के स्वभाव से मेल खाता है। एक निश्चित समय के बाद कोसी की धारा की तरह संसदीय क्षेत्र भी नया रुख अख्तियार करता है। पिछले 3 लोकसभा चुनाव की बात करें तो मतदाताओं ने हर बार नए चेहरे को मौका दिया। इस बार जदयू ने निवर्तमान सांसद दिलेश्वर कामेत पे भरोसा जताते हुए उन्हें एक बार फिर प्रत्याशी बनाया है। उनके मुकाबले हैं राजद के चंद्रहास चौपाल से। पिछली बार जदयू उम्मीदवार का मुकाबला कांग्रेस की रंजीत रंजन से था। सुपौल लोकसभा क्षेत्र के अस्तित्व में आने के बाद यह पहला मौका है जब इस सीट पर कांग्रेस की जगह राजद का कोई उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। श्री चौपाल पिछले विधानसभा चुनाव में पहली बार सिंहेश्वर विधानसभा क्षेत्र से राजद के टिकट पर विधायक चुने गए थे। भारतीय राजस्व सेवा के पूर्व अधिकारी बैद्यनाथ मेहता भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में हैं। भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो सुपौल लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इनमें सुपौल जिले के अंतर्गत आने वाले 4 विधानसभा क्षेत्रों निर्मली, पिपरा, सुपौल और त्रिवेणीगंज पर जदयू, जबकि छातापुर विधानसभा क्षेत्र पर भाजपा का कब्जा है। मधेपुरा जिले के अंतर्गत आने वाला सिंहेश्वर विधानसभा क्षेत्र राजद के कब्जे में है। पिछले विधानसभा चुनाव में सिर्फ इसी सीट पर महागठबंधन को जीत मिली थी। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो इस बार मुख्य मुकाबला एनडीए से जदयू उम्मीदवार दिलेश्वर कामैत और इंडी गठबंधन से राजद उम्मीदवार चंद्रहास चौपाल के बीच है। वहीं निर्दलीय उम्मीदवार बैद्यनाथ मेहता भी मुकाबले को दिलचस्प बना रहे हैं। जदयू उम्मीदवार जहां केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को लेकर आम लोगों के बीच जा रहे हैं, तो वहीं राजद उम्मीदवार महंगाई, बेरोजगारी, कोसी के बाढ़ के स्थायी समाधान समेत अन्य स्थानीय मुद्दे को लेकर घेराबंदी करने में लगे हैं। रोचक मुकाबले में यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि पुराने इतिहास की तरह क्षेत्र के मतदाता किसी नए चेहरे पर विश्वास जताते हैं या फिर पुराने चेहरे पर ही भरोसा कायम रखते हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए सुपौल से मैं रविशंकर चौधरी।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। सुलभ इंटरनेशनल के प्रणेता बिंदेश्वर पाठक को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। वहीं चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर सीपी ठाकुर को पद्म भूषण पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा राज्य के 5 अन्य विभूतियों को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। इनमें वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र किशोर, गोदना पेंटिंग के लिए शांति देवी पासवान और शिवन पासवान तथा टिकुली कला के लिए अशोक कुमार विश्वास को पद्मश्री दिया जाएगा। दरभंगा घराने के ध्रुपद शैली के गायक पंडित राम मल्लिक को कला क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने घोषणा की है कि 4 वर्षीय स्नातक डिग्री धारक अब सीधे राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट में शामिल हो सकेंगे। ऐसे अभ्यर्थी किसी भी विषय में पीएचडी कर सकते हैं, भले ही उन्होंने स्नातक डिग्री अन्य विषय से की हो। जूनियर रिसर्च फेलोशिप के साथ या उसके बिना पीएचडी करने के लिए अभ्यर्थियों को 4 साल के स्नातक पाठ्यक्रम में 75% अंक या समकक्ष ग्रेड की आवश्यकता होगी। अब तक नेट के लिए अभ्यर्थियों को न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री की आवश्यकता होती थी। आकाशवाणी से बातचीत में शिक्षाविद डॉक्टर संत कुमार चौधरी ने कहा कि इससे छात्रों के समय की बचत होगी।
छात्रों को काफी लाभ पहुंचेगा। जो 4 वर्षीय स्नातक डिग्री के बाद अब सीधे पीएचडी कर सकते हैं छात्र छात्राएं, ये स्वागत योग्य है। 75% से कुल अंक पाने वाले जो छात्र छात्राएं हैं वो सीधे अब पीएचडी कर सकते हैं। कहा भी गया है कि टाइम मैनेजमेंट इज द बेस्ट मैनेजमेंट। पोस्ट ग्रेजुएशन करना होता था, इसके बाद ही वो पीएचडी कर सकते थे, लेकिन अब जो ये निर्णय लिया गया है हम समझते हैं कि ये उचित भी था, क्योंकि जो छात्र छात्राएं 4 साल का डिग्री प्राप्त कर लेते हैं, पात्रता है, जैसे नेट क्वालिफाइड है, तो वो अब डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं।
बीपीएससी शिक्षक बहाली के तीसरे चरण की परीक्षा के पेपर लीक मामले में मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार सभी 5 आरोपियों को पटना लाया गया है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम आज सभी को पटना स्थित विशेष अदालत में पेश करेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Patna पर जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार हमारे YouTube चैनल AIR News Patna पर भी सुने जा सकते हैं। राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर हिस्से भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अधिकांश स्थानों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान बेगूसराय राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां का अधिकतम तापमान 43.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं शेखपुरा का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक एसके पटेल ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान बांका, शेखपुरा और भागलपुर जिले में लू की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मधुबनी, सुपौल, दरभंगा और पूर्वी चंपारण जिले में भी लू का प्रभाव रहेगा, इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है।
सतही हवाएं 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और तापमान 40 डिग्री के आसपास एवं आर्द्रता 7 से 10 % के बीच पहुंच गया है। मौसम शुष्क एवं बारिश की कोई संभावना नहीं है। तापमान अधिकांश जगहों पर उत्तर मध्य उत्तर पूर्व भाग को छोड़कर अगले दो दिनों तक 41 से 43 डिग्री के बीच रहने का पूर्वानुमान है।
इधर आज राज्य के दक्षिणी और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में गर्म दिवस रहने की संभावना है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 घंटे के दौरान कैमूर रोहतास और औरंगाबाद जिले के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ वज्रपात की चेतावनी जारी की है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिवों को हलफनामा दायर कर यह बताने को कहा है कि बड़ी संख्या में स्वीकृत पद खाली क्यों हैं। अधिकरण राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और समितियों के बुनियादी ढांचे संसाधनों और क्षमता से संबंधित एक मामले की सुनवाई कर रहा था। एनजीटी ने कहा कि इतनी बड़ी रिक्ति अधिनियमों के ठीक से कार्यान्वयन नहीं होने का प्रमुख कारण है। गौरतलब है कि देश भर में सदस्य सचिवों के लगभग 50% पद खाली हैं। सबसे अधिक पद बिहार झारखंड और दमनदीप में रिक्त हैं। बिहार स्टेट बार काउंसिल ने अधिवक्ताओं को पेंशन और बीमा योजना का लाभ देने के लिए वर्ष 1991 के मॉडल रूल में संशोधन किया है। काउंसिल के अध्यक्ष रमाकांत शर्मा ने बताया कि राज्य के 126 अधिवक्ता संघों के साथ हुई बैठक में सर्वसम्मति से ये फैसला किया गया। अग्निवीर बहाली के लिए आज से लिखित परीक्षा शुरू हो गई है। परीक्षा के लिए मुजफ्फरपुर में 4 दरभंगा में 2 और समस्तीपुर में 1 ऑनलाइन परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। यह परीक्षा 29 अप्रैल तक होगी। सिवान जिले के जीबीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत खमोरी गांव में पाराट में पटाखा चलाने के दौरान एक युवक की झुलसने से मौत हो गई। मुजफ्फरपुर जिले के देवरिया थाना क्षेत्र के रामचंद्रपुर मालिकाना टोला गांव में एक घर में आग लग जाने से एक बच्चे की झुलसकर मौत हो गई जबकि 3 अन्य घायल हो गए। पश्चिम चंपारण जिले के पिपरासी और नदी थाना क्षेत्र अंतर्गत मदरसा गांव में आग लग जाने से 60 से 70 घर जलकर नष्ट हो गए। सिवान जिले के परवानगर के मिसकड़ही मोड़ के पास एक फिटनेस केंद्र में आग लग जाने से लाखों रूपये की संपत्ति जलकर नष्ट हो गयी। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने चुनाव से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को प्रमुखता देते हुए लिखा है, बिहार को लालटेन युग में ले जाना चाहता है इंडी गठबंधन। दैनिक जागरण लिखता है, रांची में उलगुलान न्याय रैली में एकजुट हुए INTIA नेताओं ने भरी हुंकार, देश को तानाशाही से कराएंगे मुक्त। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, कांग्रेस ने बिहार में पटना साहिब मुजफ्फरपुर समस्तीपुर और महाराजगंज से प्रत्याशियों के नाम तय किए। प्रभात खबर ने लिखा है, 4 वर्षीय स्नातक में 75% अंक तो सीधे PhD। आज अखबार ने स्वास्थ्य मंत्रालय के हवाले से लिखा है, अवैध अंक प्रत्यारोपण हो तो रद्द करें अस्पताल का लाइसेंस। राष्ट्रीय सहारा समेत सभी समाचार पत्रों ने मौसम से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए राज्य के 5 संसदीय क्षेत्रों झंझारपुर सुपौल अररिया मधेपुरा और खगड़िया में आज नाम वापसी का अंतिम दिन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। सुलभ इंटरनेशनल के प्रणेता बिंदेश्वर पाठक को मरणोपरांत पद्म विभूषण से किया जाएगा सम्मानित। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कहा, 4 वर्षीय स्नातक डिग्री धारक अब सीधे राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट में शामिल हो सकेंगे। और राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर हिस्से भीषण गर्मी और लू की चपेट में। मौसम विभाग ने आज बांका शेखपुरा और भागलपुर जिले में लू की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।